मलिका ने तारापरी को अपने वश में कर लिया था, और जहां पहले तारापरी अपनी सगाई का जोड़ा बड़े ही प्यार से देख रही थी, अब उसे एक तरफ रखकर वो मलिका के साथ चल पड़ी थी। मलिका तारापरी को लेकर सीधा एक होटल में गई थी, जहां पर उसका मालिक उसका इंतजार कर रहा था। वहीं दूसरी ओर मान और अमन सरोवर स्नान करके आ चुके थे, और उन दोनों ने ही आज व्हाइट कलर का सूट पहना था, जिसमें वो लोग बेहद डैशिंग लग रहे थे। बस अब उन्हें किसी का इंतजार था तो तारा के आने का, जो कि उनकी नज़रों में तैयार होने गई थी। वहीं दूसरी ओर मलिका तारापरी को सीधा होटल के एक कमरे में ले आई थी। तारापरी ने उस कमरे को चारों तरफ नज़रें घुमाकर देखा तो वो हैरान रह गई थी। पूरा का पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था, मानो नए नवेले दूल्हा दुल्हन के लिए सुहाग की सेठ सजाई गई हो। ये सब मलिका ने अपने मालिक के कहने पर ही करवाया था। वेल, कमरे में जाने के बाद मलिका ने तारापरी को हुक्म दिया था कि जाओ जाकर उस बेड पर बैठ जाओ। तारापरी ने ऐसा ही किया। तब मलिका ने अपने मालिक को फ़ोन किया, आप आ जाइए, लड़की तैयार है, और हाँ, आप अपने इंसानी रूप में ही आना। मालिक, कहीं लड़की डर ना जाए, और लोगों को भी तो पता लग सकता है, इसलिए आप इंसानी रूप में ही आना। तारापरी बड़े ही ध्यान से उसकी सारी बातें सुन रही थी। तब उस मलिका ने उसे हुक्म दिया कि तुम इस बेड पर लेट जाओ, और अभी एक आदमी अंदर आएगा, अब से तुझे उनका ही हुक्म मानना होगा, और जैसा वो कहे बिल्कुल वैसा ही करना होगा। बस कुछ देर और, वो आने ही वाले हैं। ऐसा कहकर मलिका और तारापरी उस काली शक्तियों के मालिक का इंतजार करने लगे थे। और अभी कुछ ही देर हुई थी कि दरवाजे की ओर देखकर तारापरी हैरान रह गई थी। वहां इंसानी रूप में उस मलिका का मालिक खड़ा हुआ था, जिसे देखते ही मलिका उसके सामने झुक गई थी। और तारापरी की तो हैरत का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि काली शक्तियों का मालिक ये इंसान होगा। वो कोई और नहीं बल्कि अमित था, जो अमन का दोस्त होने का दावा करता था। वो अंदर आया और तारापरी को देखकर हंसने लगा था, और फिर वो मलिका का कंधा पकड़कर बोला, वाह मलिका वाह, मान गई तुझे, तूने मुझे बहुत खुश कर दिया है। कल रात को तूने अपनी जिस्म की खुशबू से मुझे नहलाया, और आज इस खूबसूरत बला को यहाँ मेरे पास ले आई। तुम जानती हो, जिस दिन ये पहली बार अमन के ऑफिस में आई थी, उस दिन से मेरी नज़र थी इस पर। बार बार इसकी खूबसूरती में इसकी ओर खिंचा चला जाता था, लेकिन इस लड़की ने कभी मुझे खुद को छूने नहीं दिया था। और फिर जब उस दिन अमन अपने जिन रूप में आया था, उस वक्त मैं उसे साफ देख सकता था। उसे लगा था कि उसने सबकी यादें मिटा दी हैं, लेकिन नहीं, मैं काली शक्तियों का मालिक हूँ, बादशाह हूँ, भला मेरी भी यादें कोई मिटा सकता था। और अमन को इस बात का यकीन दिलाने के लिए कि मैं उसके जिन रूप से डर रहा था, तब मैंने अपनी साइड टेबल पर रखा हुआ पानी का ग्लास अपने कपड़े पर गिरा लिया था, ताकि उसको लगे कि मैं उसके इस भयानक रूप से डर रहा था। अमन पर नज़र रखने के लिए मैं बचपन से उसके साथ हूँ, अपने सबसे बड़े दुश्मन मैंने हमेशा से अपने करीब रखा हुआ था। मैंने आज तक उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं आने दी। हर बार जब भी उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की आती, मैं उसे हर बार कुछ ना कुछ करके गलत साबित कर देता था, और वो अमन की ज़िंदगी से चली जाती थी। और आज भी देखो, उसकी होने वाली बीवी यहाँ मेरे साथ सुहागरात मनाएगी, और वो वहाँ उसका सगाई करने के लिए इंतज़ार कर रहा होगा। ऐसा कहकर वो बुरी तरह से हंसने लगा था। इसका मतलब साफ था, वो काली शक्तियों के मालिक, जो उस काली पहाड़ी पर गया था अपने गुरु से मिलने, और उस तपस्वी ने जिसे शक्ति दी थी, और जिसने उस जंगल में उस बेचारी गरीब लखड़हारे की बेटी के साथ दुष्कर्म किया था, वो कोई और नहीं बल्कि अमन का जिगरी दोस्त अमित था, जो जिन्नों की काली दुनिया का बादशाह था और इंसानी दुनिया में एक मामूली सा आदमी था, जो एक ऑफिस में एज अ मैनेजर काम किया करता था। तारापरी को इतने शॉर्ट कपड़ों में देखकर वो बेकाबू हुए जा रहा था, और उसने मलिका के होठों पर एक जोरदार किस किया और उसे वहां से जाने के लिए कहा। मलिका खिसियाती हुई सी वहां से निकल गई थी। वहीं दूसरी ओर अमन और मान की सगाई की पूरी तैयारी हो चुकी थी। करिश्मा जी ने बड़ा ही खूबसूरत ड्रेसअप किया हुआ था, सब कुछ एकदम रॉयल स्टाइल लग रहा था। तभी करिश्मा जी तारा को लेने के लिए उसके कमरे में गई और उसका दरवाज़ा खटखटाने लगी थी। लेकिन ये क्या, तारा ने ना तो अंदर से कोई जवाब दिया था, और ना ही कमरे से किसी भी तरह की, जैसे चूड़ियां पायल तैयार होने की, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। करिश्मा जी को गहरी आशंकाओं ने घेर लिया था। वहां मां अमन से बोला था, भाई बहुत देर हो गई है मॉम को गए हुए, लेकिन वो अभी तक तारा को लेकर नहीं आई है। अमन, तू ठीक कह रहा है, पर हो सकता उसे तैयार होने में देर हो गई हो, मॉम उसकी मदद कर रही हूँ, वेट कर लेते हैं, आ जाएंगे। लेकिन 20 मिनट गुजर चुके थे, ना ही तारा आई और ना ही अमन की मॉम। तब दोनों भाई भी परेशान हो उठे थे, और वो दोनों उन दोनों की अपनी मॉम और तारा को देखने के लिए उसके कमरे की ओर चल पड़े थे। और उन्होंने जाकर देखा, उसकी मॉम तारा के कमरे के बाहर मायूसी खड़ी हुई थी। अपनी माँ को इस तरह से मायूस देखकर अमन और मान दोनों का खिला हुआ चेहरा एकदम से मुरझा सा गया था, और वो दोनों जल्दी से अपनी माँ को हिलाने लगे थे। क्या हुआ मॉम, आप ऐसे बाहर क्यों खड़ी हैं? तब करिश्मा जी अपनी आंखों में आंसू लाकर बोली, बेटा क्या बोलूं, कितनी देर से तारा बेटी को पुकार रही हूं, लेकिन वो ना तो कुछ जवाब दे रही है और ना ही दरवाज़ा खोल रही है। अपनी मॉम की बात सुनकर वो दोनों भाई एकदम से दुखी हो चुके थे, क्योंकि वो अब हर चीज़ को दाव पर लगाने को तैयार थे, लेकिन तारा को वो किसी भी कीमत पर नहीं खो सकते थे। तब अमन, मॉम अगर ऐसी बात थी तो आपको हमें आकर बताना चाहिए था। तब करिश्मा जी, बेटा मैं क्या बताती आकर, जब से तारा बेटी ने कोई जवाब नहीं दिया तब से मुझे तो ऐसा लग रहा है मानो मेरे जिस्म में तो जान ही ना हो। तब अमन, मान मान दरवाज़ा तोड़ दो और अंदर जाकर चेक करो। मान ने अपनी माँ को दरवाजे के सामने से हटाया और दरवाजे को घूर घूर कर कड़ा कड़ा देखने लगा था, और मान के देखते ही कुछ क्षणों में वो दरवाज़ा टूटकर अलग गिर पड़ा था। अमन जिन बन पाता था, लेकिन मान जिन नहीं था। अभी तो उसके अंदर हवा से भी तेज चलने की शक्ति थी, और किसी भी चीज़ को, चाहे वो पत्थर हो, पहाड़ हो या लोहा हो, उन सब चीज़ों को वो आँखों ही आँखों से तोड़ने पिघलाने का दम रखता था। और इतना ही नहीं, उसके अंदर एक अजीबो गरीब शक्ति और थी। वो एक जगह पर खड़ा हुआ अपना हाथ दूर तक ले जा सकता था। वो एकदम फ्लेक्सिबल सा था, कहीं भी मोटा और पतला हो सकता था, इतना पतला कि किसी छोटी सी मुड़ी में को बाहर निकल जाए। वेल, जैसे कि अब मान ने वो गेट तोड़ दिया था, तो वो तीनों, मान, अमन और उसकी माँ, जल्दी से उस कमरे में चले गए थे, और उन्होंने देखा तारा परी वहाँ नहीं थी और उसके कमरे की खिड़की भी खुली हुई थी। वो तीनों हैरान रह गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो लोग क्या करें।
अमन ने गुस्से से तारा परी का जो बेड था उसे उठाकर पटक डाला था कि तभी उसकी नज़र तारा परी की वॉशरूम की ओर गई। उसने देखा कि वो दरवाज़ा आधा खुला है और आधा बंद है। अमन जल्दी से उसके बाथरूम की ओर गया, और उसने बाथरूम में जो देखा वो देखकर वो चिल्ला पड़ा था, मॉम, मान, जल्दी आइए, जल्दी। अमन की आवाज़ सुनकर उसकी माँ और मान वहाँ दौड़ कर आए, और वो दोनों भी हैरान रह गए। तारा परी बाथरूम में बेहोश पड़ी हुई थी। तारा परी को देखते ही उन तीनों की जान में जान आ गई थी। तब करिश्मा जी, बेटा खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, तारा बेटी को उठाओ और कमरे में लेकर चलो और लिटाओ उसे। अमन ने जल्दी से आगे बढ़कर तारा को उठाया और उसे उसके कमरे में ले गया, और जो बेड उसने गुस्से से साइड कर दिया था, तब सबसे पहले उसने उसे ठीक किया और तारा को बेड पर लिटा दिया। तब करिश्मा जी, ओ गॉड, ये क्या हो गया मुझसे, ये बच्ची तो कब से अंदर ही थी और शायद बीमार होकर बाथरूम में गिरकर बेहोश हो गई थी, और मैं समझी थी कि ये भी पहले वाली लड़कियों की तरह छोड़कर चली गई थी। तब अमन, मॉम, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है, आप परेशान मत होइए, सबसे पहले इसको होश में लाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तब तक मान एक ग्लास पानी ले आया था और उसे जगाने की कोशिश करने लगा था, लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया था। वो तीनों काफी परेशान हो चुके थे, और अभी वो लोग कोशिश कर ही रहे थे कि तभी अमन के फ़ोन पर एक SMS आया था। वो SMS किसी और नहीं बल्कि मलिका का था, जिसमें लिखा था कि तेरी जिससे आज सगाई होने वाली है वो किसी और के साथ एक होटल में रंगरलिया मना रही है, होटल का एड्रेस भेजती हूँ, जाओ और जाकर खुद देख लो। मलिका के मालिक यानी अमित ने कहा था कि 2 घंटे के बाद अमन को SMS करना, लेकिन मलिका को अमित पर काफ़ी गुस्सा था क्योंकि उसने फिर से उसके होंठों को चूमा था, इसलिए गुस्से में उसने अमन को पहले ही SMS कर दिया था। अमन इस SMS के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था, और वो एक नज़र उस मैसेज को देखता तो दूसरी नज़र अपने सामने बेहोश पड़ी तारा को देखता। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह का मजाक उसके साथ कौन कर सकता था। तब अपने भाई को इस तरह से परेशान देखकर बोलने लगा था, क्या हुआ भाई, किसका मैसेज था जो आप इतना परेशान हो रहे हो? तब अमन ने वो मैसेज अपने भाई को दिखा दिया था। मैसेज देखकर वो भी शॉक्ड हो चुका था, और वो भी एक नज़र कभी तारा को देखता तो कभी मैसेज को। गाइस, प्लीज़ लाइक्स एंड शेयर इन योर फ्रेंड सर्कल।